नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता ही नहीं प्रौद्योगिकी परिवर्तन का नेता भी बन चुका है। उन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास और नवाचार योजना कोष का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास के क्षेत्र में राज्य की प्रगति की सराहना की। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में चवेल्ला के पास ट्रक के बस से टकराने से 19 लोगों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान कल शाम समाप्त होने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में ताकत झोंकी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीतने पर बधाइयों का सिलसिला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब तकनीक का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि ये प्रौद्योगिकी परिवर्तन का नेता बन चुका है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आज उभरते विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि विश्व के सबसे अधिक सफल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को देश में निर्मित किया गया है।
कोविड के दौरान हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। इतने मेहनत स्केल पर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना ये पॉसिबल हुआ क्योंकि आज दुनिया का सबसे पहला और सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी के पास है तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देश में नवाचार का आधुनिक तंत्र निर्मित करने के लिए अनुसंधान को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन चुका है। साथ ही देश का सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर परिवर्तनकारी छलांग लगा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के सभी निवासियों और विधायकों को बधाई देते हुए पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड की उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की।
उत्तराखंड में अनुपम सांस्कृतिक संपदा और सौंदर्य विद्यमान है। ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ये देवभूमि भी है। प्रकृति के इस उपहारों का संरक्षण करते हुए विकास के मार्ग पर राज्य को आगे ले जाना आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए।
राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि सुशीला बलूनी, उपेंद्र पाल और वंदना कटारिया जैसे महिलाओं ने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्य सरकार और विधानसभा की सराहना भी की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि हाल के वर्षों में भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 5वीं भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा है कि दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, स्वास्थ्य, संस्कृति के क्षेत्र में द्विपक्षीय निवेश और लोगों के बीच आपसी संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति के साक्षी रहे हैं। इस अवसर पर बहरीन के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल लतीफ बिन रशीद अज़ज़यानी ने कहा है कि बहरीन और भारत के बीच के ऐतिहासिक व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध लगभग 5,000 साल पुराने हैं। उन्होंने कहा है कि ये आर्थिक संपर्क संबंधों के बीच रहे हैं। ये संबंध विभिन्न क्षेत्रों में फले फूले हैं। बहरीन के विदेश मंत्री 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली में आए हुए हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में चवेल्ला के पास मर्जा गुड़ा खानपुर रोड पर सड़क दुर्घटना में 19 लोगों की मृत्यु हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह हादसा बेकाराबाद हैदराबाद रोड पर सुबह करीब 8 बजे हुआ जब ट्रक ने दोपहिया वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में आरटीसी बस को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक पर लदी बजरी आरटीसी बस पर गिर गई जिससे कई यात्री बस के अंदर फंस गए। पुलिस और बचाव दल ने बजरी के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए 3 जेसीबी मशीनों की मदद से अभियान चलाया। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रक के ओवरलोड होने के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। बस में लगभग 70 यात्री सवार थे। विकाराबाद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार बरामद 19 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और 20 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में एक ही परिवार की 3 लड़कियां भी शामिल हैं। आरटीसी बस और ट्रक दोनों के चालकों की भी मौके पर ही मौत हो गई। राज्य प्रशासन घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी इस दुर्घटना को दुखद बताते हुए इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन दोनों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र में जनसभाएं और रैलियां कर रही है। पहले चरण का चुनाव प्रचार कल शाम को समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बीच दूसरे चरण के लिए भी प्रचार जोर पकड़ रहा है, जिसमें 122 विधानसभा सीटें हैं।
जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। श्री कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कई सौगात दी है। उन्होंने कहा कि दोबारा एनडीए सत्ता में आती है तो विकास कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से महागठबंधन द्वारा किए जा रहे वादों को धोखा बताया। श्री कुमार ने कहा कि उन्हें वोट देने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि किस प्रकार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी। इधर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भोजपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काम करेगी। सातों दल के घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया गया है। तेजस्वी यादव ने जनसभा में कहा कि बिहार में राजनीतिक बदलाव बिल्कुल निश्चित है और इस बार जनता महागठबंधन को सत्ता में लाएगी। एनडीए की ओर से भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सहरसा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इधर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल क्षेत्र में कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया और उन्होंने इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों को दोषी ठहराया। जनसुराज पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर भी कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो सक्रिय रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। कल मीडिया से बातचीत में श्री ट्रंप ने कहा है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ICC एक दिवसीय महिला विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। कल रात नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय टीम को प्रतिभा और प्रदर्शन के अनुरूप परिणाम मिला है और यह ऐतिहासिक उपलब्धि महिला क्रिकेट को और अधिक ऊंचाई पर ले जाएगी। GST दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए GST बचत उत्सव से देश भर में नागरिकों को लाभ हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगली पीढ़ी के GST सुधारों ने तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है।
नए GST सुधारों ने तेलंगाना के विकास को गति प्रदान की है। फार्मा क्षेत्र में 30 से ज्यादा कैंसर की दवाओं पर GST कर को शून्य कर दिया गया है। साथ ही सभी दवाओं पर कर को 5% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से राज्य में स्वास्थ्य सेवा अधिक किफायती और सुलभ हो गई है। वहीं इन बदलावों से एरोस्पेस और रक्षा निर्माण उद्योग में, कृषि, खनन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में ड्रोन की मांग बढ़ी है। कर बदलावों के अंतर्गत मानव रहित विमानों, टैंकों और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों पर कर की दरों को घटाकर 5% कर दिया गया है। खिलौने और हस्तशिल्प क्षेत्र में निर्मल खिलौने और शिल्प, पेमवर्ती धातु शिल्प, आदिलाबाद डोकरा और वारंगल दरी जैसी जीआई टैग उत्पादों पर कर की दर को घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी कर में इन बदलावों से लागत कम हुई है, साथ ही निर्यात को और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही पारंपरिक शिल्प और खिलौनों की बिक्री में वृद्धि हुई है, कारीगरों की आय में इजाफा हुआ है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग में बढ़ोतरी हुई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।